Siddharam Namo Vairiyaram Namo Vajjayaram Namo Loye Sabhisahuram Mangalam Bhagavan Viro Mangalam Gautimo Gadi Mangalam Kunda Kundadhyo Jaini Dharmostu Mangalam Sarva Mangal Mangalyam Sarva Kalyan Karikam Pradhanam Sarva Dharmanam Jainam Jayatu Sasanam Jainam Jayatu Namah Samay Saray Swani Bhutya Chakasati Chisvabhavai Bhavai Sarvi Bhavantirachyadi Vanditu Sabhisiddhi Dhramachalmano Vavam Gadimpatti Vochami Samay Pahur Minavo Sudhiki Vali Vanidam 31 गाथा का पाठ करके चल मूल ग्रंथ में जो इंदिये जड़ता सभी लोग बोला है जो इंदिये राड़ सहाबादियम मुड़ दियादम तम खलुजी दिंदियम ती भड़न्ति जेड़े छिदासाहूम कर इंद्री जे ज्ञाने सुभावेरू अधिक जाने आत्मे को निश्चय विशेषित साधुजन भासे जितेंद्री उन्हीं को जो इंद्रियों को जीतकर ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्य से अधिक आत्मा को जानते हैं उसे जो निश्चय में स्थित साधुगण है वे वास्तव में जितेंद्री कहते हैं जितेंद्री होना यानी मोक्ष मार्गी होना जितेंद्री होने की विधि ये है इस गाथा में प्रारंभ की कि इंद्रियां आत्मा नहीं है कहां जड़ और कहां चेतन परंतु जीव को इतना बड़ा पाप क्यों चलता है कि आंख के बिना नहीं देख सकता कान के बिना नहीं सुन सकता ये तो बहुत मोटी बात है जब ये जड़ है तो इससे चेतन के परिणाम कैसे होगा परंतु ये जड़ तो होने पर भी ये जानने में भोगने में निमित्त बनती है और ये जीव की अनादि से स्वरूप की दृष्टि न होने से निमित्ताधीन दृष्टि होने से ये महाभयंकर रोग चलता कान सुनाई न पड़े न तो ऐसा करता क्यों करता है क्योंकि आत्मा से ज्ञान होगा ये तो शास्त्र में लिखा है चित्त में ये बैठा रहता है कि प्रॉपर आवाज आना चाहिए सावधान रहने चाहिए तो हमें सुनाई दे तो ये महापाप है और ये जनवाणी हमसे छुड़ाना चाहे थी ये मुक्ति के मार्ग में लगाना चाहे थी तो ये गाथा कहती है कि जो इंद्रियों को जीत कर क्या करना है अपन को इंद्रियों को जीतना अब इंद्रियों को जीतना कहा तो इंद्रिय नहीं मालूम थी कितनी होती कौन से प्रकार की होती फिर ये नहीं मालूम था कि जीतना क्या कहलाता फिर ये भी नहीं मालूम था कि कौन से उपाय से जीतें और ये भी नहीं पता था कि जीतने का प्रयास क्यों करें क्या मिल जाएगा ऐसे एक गाथा में गुरुदेव ने अमृतचंद भगवान ने ये सब रहस्य खोले कि इंद्रियां एक पांच प्रकार की जो जगत पढ़ाता है हमने मानी पांच प्रकार की नहीं है तीन प्रकार की द्रव्य इंद्रियां भाव इंद्रियां और भाव इंद्रिय के विषय। तो ये पांच इंद्रिय नहीं है कि ये सब द्रव्य इंद्रियां। पांच इंद्रियां काय की बनी है, जड़ की पुद्गल की द्रव्य इंद्रियां। तो इनको जीतना 31 नंबर की गाथा में द्रव्य इंद्रियों को जीतने की, भाव इंद्रियों को जीतने की पद्धति है। जो द्रव्य इंद्रियों, भाव इंद्रियों और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों को, तीनों को जीतने की विधि अपने से अलग करके। अब करके का अर्थ क्या होता है, ज्ञान अपने पास साधन और उससे इंद्रियों को अलग करें, तो कैसे करेंगे अलग? यदि इनको फोड़ेंगे तो आत्महत्या हो जाएगी। तो कैसे अलग करते हो? कि अलग करना यानी अलग है तो अलग जानना, इसका नाम अलग करना। शक्कर और नमक मिला के शिकंजी बनाई, तो मिलाने पर भी मैं मिले कि नहीं, कि नहीं मिले, तो अलग कैसे हुई? कि ज्ञान में अलग अलग है। ये टेस्ट शक्कर का है, ये टेस्ट नमक का, पता चलता है ना अलग अलग। तो ऐसे ही अपन को पता चलना चाहिए कि ये पुद्गल की रचना है और भीतर होता है ज्ञान, ये आत्मा की रचना। तो ऐसा अपने ज्ञान में ब्रेन बास में ही बैठना चाहिए। इंद्रियों के जो विषय है अपने से अलग करके समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करता। अभी गुरुदेव ने बताया था कि स्तुति किसे कहते हैं, कि स्तुति अस्ति से कहे तो अपने स्वरूप का अनुभव, ये स्तुति कहला। परंतु इसे तो इंद्रियों से जीतना कहा, तो ये नास्ति से कहा। क्यों कहा? क्योंकि जीव का उपयोग इंद्रियों की तरफ जाता और इंद्रियों को साधन बना के सारे जगत से संबंध बैठाता। इंद्रियां जगत के गेय पदार्थ को, विषयों को जानने में निमित्त होती हैं, तो इसे ये इंद्रियां प्राण दिखती हैं। इसके अलावा तो हम जी नहीं सकते, हम मर जाएंगे। यदि अपनी आंख फूट जाए, ऐसा कोई डॉक्टर कहे कि अब तुम्हारी आंख एक साल के बाद फूट जाएगी, तो सुन करके एक साल कैसे बीतेगा? और जैसे आत्मा से ज्ञान होता है, आत्मा में सुख है, आत्मा ही मेरा अस्तित्व है, सत है, ये रुचि हो, उपलब्धि हो, अनुभूति हो, उसे लाखों वर्षों जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, एक कल जाता तो आज छूट जावे, इससे न ज्ञान होता है न सुख होता है। जो आत्मा का अनुभव करता है वो जितेंद्रिय है। अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय के बस, यानी संबंध जीव का इस पुद्गल से, कर्म से भी और शरीर से, ये दोनों का संबंध जीव से कब से चला रहा? अनादि से। और है कैसा? अमर्याद रूप। ये कब तक चलेगा ये समझ में नहीं आता। अमर्याद रूप है यानी ऐसा दिखता नहीं है लक्षण ये मोहियों को देख के, कि जो दिन रात बहिर्मुख रहे और फिर इन्हें भाव न मिले, संसार न मिले, कहते ये समझ में नहीं आता। वो तो जिनकी नजर पलट गई है उनकी मुक्ति सामने दिखती है, और जिनकी नजर नहीं पलटती है वो कहते कि इनके भगवान ने मोक्ष नहीं देखा। जैसे किसके मालूम? द्रव्य गुण के भेद में लगे उनका मोक्ष नहीं देखा। नियम साहब, ये तो इंद्रियों की बात चल रही। वहां तो इतना कहा कि तू किसी भी प्रकार के विकल्प में, राग में, गेय में, पुद्गल में अपना उपयोग खराब करेगा, विकल्प खड़े करेगा तो तेरे संसार ही खड़ा होगा। उदाहरण है अपने सामने नकुल और सहदेव, 33 सागर, सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि, श्रेणी आरोहण करने वाले 11वें गुरु स्थान में गए बाबूजी, और इसके बाद अभी संसार में कोई छोटा मोटा अपराध है क्या? जरा सा राग हुआ, अपने को जरा सा लगता है, वो कह रहे इतनी देर आत्मा छूटी, ये जरा देर हर्ट है ना, ऐसा जरा देर रुक जाए, थोड़ी देर, कि बहुत दिन हो गए, थक गए होंगे, तो देखो जरा सी देर में फिर क्या होता। मोड़ो और ड्राइवर जरा देर झपकी लगा दे बाबू, फिर बताना क्या होता 150 लोगों का। कहते जरा सी मचक नकुल सहदेव को कितना बड़ा संसार खड़ा कर दिया। 33 सागर वहां रहो, चौथे गुरु स्थान, यहाँ मम्मी के पेट में आओ और फिर बाद में बढ़ो, फिर मुनि बनो, फिर ये संसार चलेगा। जिसे अपन जरा सा कहते हैं उसमें ये कह रहे कि अनंत सुख से वंचित हो जाता है, इतना बड़ा लाभ है आत्मा के भोगने का और इतना बड़ा कष्ट है आत्मा छोड़ने का। भोजन न मिले 10-15 दिन तो नहीं मरेगा, पानी न मिले 2-4 दिन तो नहीं मरेगा, वो सांस न मिले तो ऑक्सीजन न मिले कितनी देर न मिले, क्षण भर में चला जाएगा। ऐसे ये कहते हैं कि सब कुछ अपन कर ले और आत्मा न समझे तो बताओ कितने दिन अपन संसार में सुखी रहेंगे, कितने क्षण सुखी रहेंगे। सारे आयोजन का आधार शिला शुद्ध आत्मा है, मोक्ष मार्ग। तो ये अनादि से है, अमर्याद रूप है, बंद है और उसका उदय है और उसके वसीभूत खुद है। स्वामी जी एक अलग से श्लोक कहते थे दूसरी समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अध्याय का समय सार का, राग जन्मनि निमित्तताम पर द्रव्य मेव कलयंतु एतुते। राग जन्मनि, राग की उत्पत्ति में निमित्तताम, निमित्त को ही जो कारण मानते हैं, पर द्रव्यम एव, पर द्रव्य को ही कलयंतु एतुते, वास्तव में जो पर द्रव्य को ही अपने राग का कष्टों का कसायों का कारण मानते हैं, उत्तरंत नहीं मोह वाहिनी, वे कभी मोह रूपी नदी को पार नहीं कर सकते। कैसे हैं वे? शुद्ध बोध विदुरांध बुद्ध है, इनकी शुद्ध आंख फूट गई, इन्हें रास्ता नहीं दिखेगा। किसको? जिसे अपना कष्ट दूसरे से दिखता है, अपनी गलती समझ में नहीं आती, कभी गलती कोई बताता नहीं है, निकालने की नहीं सोचता, पर ऊपर से सुन लेता है और शांति से चला जाता। तो कहते ये तो मार्ग नहीं है, मार्ग तो विशुद्धि पूर्वक प्रयोग में आकर पर अंतर्मुख अनुभव होता। ज्ञान मिला अपन को, छम विशुद्धि भी मिली, पर इस जाति की विशुद्धि चाहिए कि हमें अब जो श्री गुरु स्वभाव बताएंगे वो स्वीकार करेंगे और जो दोष बताएंगे वो निकालेंगे। दोनों बातें बताएंगे, पर्याय में अपराध चल रहा वो निकलना है और जो स्वभाव है वो साधना है और यात्रा हो जाएगी मंगल। तो बंद पर्याय की बस यानी जिस पर्याय में गया उसी को अपना मानता है। कौन सिखाता है कि आंख से दिखता है, कान से सुनता है, कि बहुत पुराना अभ्यास है। मम्मी का दूध पीना बच्चे को कौन सिखाता? बहुत भाव हो गए, इसी तरह का धंधा। कि कौन कहता कि शादी करो, कौन कहता घर गृहस्थी बसाओ, इसे पढ़ाने नहीं पड़ता। ये चार कसाय चार संज्ञा, ये तो पढ़ा पढ़ाया आता, ये पढ़ाना पड़ रहा है। जीव को जीव पढ़ाने की क्लासें चल रही डॉक्टर साहब जीव है और ये पढ़ा क्या रहे हैं कि तुम जियो। आश्चर्य लगता है कि नहीं कि ये भगवान हम जियो और हमें कह रहे हैं कि भाई साहब तुम जियो, डॉक्टर नहीं। तो अपन को ऐसा लगेगा कि क्या हम इतना भी नहीं जानते कि हम जियो, कि नहीं जानते। ये इतना पढ़ गए हो कि मैं वक्ता हूँ राजेंद्र हूँ, ये इतना पढ़ गए हो कि कोई रस्ते से निकले और पंडित जी किसी दूसरे को कह रहा हो कि पंडित साहब जय जय, तो हमें लगेगा जैसे हमसे कर रहा। ये इतना दिमाग में बैठ जाता, कहां से कैसे विपरीतता पड़ गई। ये कह रहे कि जीव को अनादि बंद पर्याय के बस होने का रोग है, जिस पर्याय में जाता उसके प्रति इसे एकत्व ममत हो जाता और फिर उस परिवार के सदस्यों से बहुत घुल मिल के रहता है, वो ही अपना है सब कुछ, इसके आगे हम सोच नहीं सकते। यही भोजन, यही पानी, यही घर। डॉक्टर साहब बताना, शिखर जी में आपको जो कमरा दिया हो है ना, आप पंडाल में घूम के आ जाओगे फिर लौट के कहाँ होगे? वो आप ही अपने कमरे में आओ, हम कहेंगे हमारे कमरे में चलो, कि नहीं नहीं अब आराम करें, तो वो कमरा तुम्हारा है कहाँ? नहीं नहीं वो ही, जो मिला उसी में एकत्र हो जाता, जो सलासा शरीर मिला इसी में एकत्र। कैसे मूर्छा कैसी है, यानी मिथ्यात कितना बुरा पाप है, जहां देखो जहां आम करता। इतना बड़ा भगवान ज्ञान स्वभावी आत्मा ये दिखाई नहीं देता, और जो बिल्कुल अपना नहीं है अभी मिला है छूट जाएगा, यही सब कुछ दिखता। तो इसके बस होकर कैसे पता चला अपन को कि इसके बस है? 100 पर का विभाग अस्त हो गया जैसे एक पुस्तक है, बाबू जी बता ना ये पुस्तक किस कलर की, लाल कलर की, कहाँ है लाल कलर, यानी दो है ना इसके पड़के, एक बाहर का और एक भीतर का, तो हमें एक तो दिखाई दिया और दूसरा भी है कि नहीं अपने साथ, तो दूसरा भी आपके ज्ञान में होना चाहिए, वो प्रमाणिक ज्ञान कहलाता है। तो अपन ने तो कहा लाल समय सार है ना, लाल समय सार होता है, तो वो ये कहते हैं कि ऐसे ही जीव को अपने बारे में विश्वास हो गया है कि हम पंचेंद्रीय जीव। अभी अपन देव की पर्याय में कि मनुष्य की पर्याय, मनुष्य की पर्याय ऐसा हो गया ना, रोम रोम में भर गया। अच्छा अपन मनुष्य पर्याय में है कि जीव की पर्याय में, जानने देखने की पर्याय, वो बिल्कुल दबा रहता, जो सब कुछ बताता है वो दबा रहता है, और जो बिल्कुल नहीं है आके चला जाता है वो हावी रहता। जैसे अपने घर में कोई मेहमान आता है ना, तो अपन मेहमान की व्यवस्था में अपने बच्चों तक को कहते चुप रहो, अभी नहीं मिलेगा भोजन, अभी पंडित जी आए सबकी व्यवस्था करने के बाद तुम्हें भोजन दे। तो घर का मालिक तो ये लड़का होना, और उसे डांट पड़ती, उसे भोजन नहीं दी, और ये मेहमान थोड़ी देर के लिए है और वो राजा बाबू बन जाता। ऐसे ये देह कितनी देर के लिए मिली दिलीप भाई, इसका पीरियड है ना आयुकर्म प्रमाण, और इसके बाद मिलेगी क्या अगले वो नहीं मिलेगी, पर इससे जितनी देर मिली है ये पूरी पूरी कसरत करके इसको अपना मान। इनने तो ये भाषा दी है, अपन तो फीलिंग कर रहे, इन्हें तो सास में लिखा कि तुझे सो पर का विभाग समाप्त हो गया, चैतन्य सूर डूब गया तेरा, ऐसा लिख रहे। जैसे सर्वज्ञ देव का विरह पंचम काल में हो गया है, ऐसे ही तेरे मगज में तेरे ज्ञान में ज्ञायक सूर का अस्त हो गया, दिखाई नहीं देता कि आत्मा नाम की कोई चीज, क्या दिखाई देता, ये दिखता है जो सामने खड़ा है। तो ये तो पुद्गल है, मुर्दा है, स्कंद है, अचेतन है, जड़ है, पिघलता गलता है, सात धातु भरी गंदगी का पिटारा है, ये अपना कैसे हो जाएगा, नहीं यही हमारा। इसकी 100 फोटो जो पेपर में आई 100 व्यक्ति की आपके साथ, और आपकी फोटो तुम्हें दिख जाएगी, और तुम्हारी फोटो है कि शरीर इधर कौन सोचे, वे इनको तो करुणा आती नहीं कि भाई साहब तुम तो विवेकी हो, तुम तो ज्ञान स्वभावी हो, तुम्हारे तो सैनिक पंचेंद्री पना मिला, तुम्हें तो छेप संज्ञान है, तुम तो सोच सकते, पेड़ तो बेचारा सोच नहीं सकते, चीटा सोच नहीं सकता, मच्छर सोच नहीं सकते, भौंरा सोच नहीं सकता, इनको तो मन नहीं मिले, पर आप तो बहुत अच्छी जगह आ गए, आप तो अपने विवेक का प्रयोग करो कि ये ज्ञान हो कहां से रहा। तो जागृत व्यक्ति चाहिए इसमें, धर्म अपना इतना कष्टदायी नहीं है जैसा जगत मानता है। हमने जहां कष्ट माना वहां कष्ट नहीं, जिसे कष्ट माना वो कष्ट नहीं, हमने जहां सुख माना वो सुख नहीं, जहां जिस प्रकार का सुख माना उस प्रकार का सुख, ये कुछ सिखा रहे पहली क्लास पढ़ा के, यानी के जीवन, ये शरीर तुम्हारा नहीं, तो ये हमें नहीं जानते, तुम जानते तो ज्यादा हो हमसे, अपन तो मुनिराजों से ज्यादा जानते ज्ञानी जन, पर वो सही नहीं जानते, आंख से दिखता है कि नहीं अपन है? देखो ये सिखाती है, अब दो लाइनों में अपन पढ़ते कैसे द्रव्य इंद्रियों के जीता जाता है। स्वपर का विभाग अस्त हो गया, ये तो आपको समझ में आता है कि कोई भी चीज अपन को मिलावटी दिखती है, कोई भी चीज हो, जैसे चाय का पैकेट है तो उसमें रेड लेवल टी या डायमंड टी ताजमहल कुछ लिखा है, तो वो जहां लिखा है वहां बिल्कुल चाय नहीं, वो जहां चाय है वहां लिखा नहीं, ऐसे है ना, दो चीजें हैं, एक पैकिंग है और एक माल है, तो ये पैकिंग है और भीतर माल है, तो अपन कुछ सब कुछ क्या देखता है, ये कागज की पैकिंग अच्छी लगती है, ये देखते रहते थे, और ये ऐसा चरपाट फड़ के सब नष्ट होना। अभी मंदिर में तो सुन लेते हैं कि ये हो जाएगा, भीतर से नहीं सुन सकते, अपना बहुत बड़ा अपमान, कोई अपन को ऐसा नहीं कह सकता कि राजन पायन कैसा बनता, इतना कहना है ना, सुनने में ताकत चाहिए, नाम से एकत्र हो गया। जो अब कैसे होगा इसका इलाज, जो आत्मा के साथ ऐसी एकमेक हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता। कैसे नहीं दिखाई देता बताओ बाबू। जैसे अपन प्योर गाय का दूध लाए है ना, तो वो गाय का दूध है कि पानी भी मिला है, बिल्कुल प्योर लाए जिसमें कुछ भी पानी नहीं मिला है, तो अभी उस दूध में पानी मिला है कि नहीं? मिला रहता, वहीं से आता है, स्वर्ण पाषाण दोनों रहते। ऐसे ही जहां भी जीव रहेगा शरीर के साथ ही रहेगा, सिद्ध भगवान ही अशरीर ही अलग बैठे दिखाई देते। अब वो कहते कि तुम्हें शरीर से मिलेगा और तुम्हें शरीर रह देखना, मिलेगा तो शरीर में, पर शरीर जीव नहीं हो सकता क्योंकि शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा, तो एक में एक हो रही है, भेद दिखाई नहीं देता। ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त कौन है? द्रव्य इंद्रिया, ये जड़ इंद्रियों को द्रव्य इंद्रिया कहते हैं। अब देखना इसका उपाय बताते हैं, गजब का उपाय। द्रव्य इंद्रिया जो शरीर परिणाम को प्राप्त, यहां से चालू कर दी कथा, ये जो शरीर मिला है, आंखें नाक कान जीव स्पर्शन इंद्रिय मिली, पांच इंद्रियां, ये किसे मिली? पंचम काल में अपन जन्मे और अपन को कौन सा शरीर मिला? औदारिक शरीर की बैक्रिया के आरक के तेजस कौन सा में? औदारिक शरीर मिला, तो तुम्हें मिला है कि शरीर को शरीर मिला? डॉक्टर साहब एक एक लाइन में मिथ्या गलाने का उपाय बताते, मुझे रे शरीर मिला। जैसे अपन को भाई साहब ने हमसे कहा ये पुस्तक आपको भेंट थी है ना, तो ये पुस्तक हमें दी है ना, तो ये पुस्तक हमारी हो गई कि समय सार की है? तो हमारी कहां से होगी? अभी बाबू जी की थी, अब हमारी होगी। इनकी पहले भी नहीं थी, अब हमारी नहीं है, पर पहले हम इनकी मानते थे, अब अपनी मानते। तो मानो तुम्हारे मानने में छूट, कुछ भी मानते रहो, ताजमहल हमारा है, पूरा भारत हमारा है, मानने से क्या होता? पर एक परमाणु भी मेरा नहीं। तो ये पहली लाइन लिखी पैसा, ये लिखी कि ये इंद्रियां शरीर परिणाम को प्राप्त है, शरीर में होती इंद्रियां आत्मा में नहीं होती है। वही जीव कहते हैं कि मेरा वजन मेरी ऊंचाई मेरा रंग मेरा रूप ये सब भ्रम छूट जाए, इसको एक लाइन भी यथार्थ पड़े। शरीर परिणाम को प्राप्त है द्रव्य इंद्रियां है, अब छूटेंगे कैसे? निर्मल वेदा व्यास की प्रवीणता से। बाबू जी उपाय देखो आप गजब का लिख, कौन सा वेद ज्ञान लिखा है इसमें? निर्मल वेद, और भेदा व्यास लिखा है कि गया व्यास लिखा? ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ज्ञान का अभ्यास कहाँ करना चाहिए? मन में करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कि प्रत्येक समय जो जानने में आता है, जो भी विषय बनता है, उस समय आप भी हो। जैसे अभी यहाँ पर कितने भगवान अपने इस वेदी पर, बाबू जी आपने देखी ना अभी वेदी सीमंदर भगवान, इसमें कितने भगवान बैठे है? तीन भगवान बैठे। अब ये कहते हैं कि चार है, इसमें लिखा है कि चार है, ये कैसे चार है? तीन तो सबको दिखाई देते, तीन है ना भगवान, एक सीमंदर भगवान है, दो और है, अब तीन हो गए, अभी चौथा भगवान कौन सा है? ये खेम जी बही थे तभी बच्चों से पूछते थे, जाओ कमरे में क्या क्या है लिख के लाओ, तो सब सामग्री लिख के लाते थे और एक चीज भूल जाते थे। ज्ञानचंद जी विदिशा सोनागिर में कहते भाई वंदना हो गई अच्छी? हाँ हो गई साहब। कितने मंदिर है? 108। मंदिर तो 109 है, 108 है बाबू जी, हमने पूरे गिने सब देखे कि भाई साहब समझ में आए, यानी 10 व्यक्तियों ने नदी पार की तो 9 क्यों रही? ये गुरुदेव ने ज्ञानी जनों ने सिखाया। देखो अब इस लाइन में लिखा है अभ्यास बाबू जी दिन भर करना है, पौन घंटा या नहीं करना, इतने इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो सुनने का अभ्यास चल रहा, ये तो भेद अभ्यास कह रहे हैं। शरीर परिणाम को प्राप्त ये द्रव्य इंद्रियां, ठीक है। अब इसके आगे अब इनको क्या करना है? इनमें कुछ नहीं करना, आपको निर्मल वेद अभ्यास चाहिए और वेद अभ्यास में प्रवीणता चाहिए। प्रवीणता यानी तुम चतुराई से वितरागता निकालना, ऐसी पढ़ाई पढ़ना, ऐसे प्रैक्टिकल करना। ऐसे नहीं कि वेद अभ्यास करो राग द्वेष खड़े करके। पाकिस्तान अलग है और हिंदुस्तान अलग है। रहे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान के गीत गा, ऐसे ज्ञान हुआ गायक से और बताए नालायक से। ये इसमें लायक लायक आते जानने की। और इकाई से मानता है ज्ञान जड़ से। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्री से ज्ञान उपजता है। मैं मान रहा था अब तक प्रभु जड़ चेतन सर्जन कर सकते, यानी जड़ से चेतन की पर्याय उत्पन्न हो सकती नहीं हो सकती, परंतु चल रही गाड़ी अभी तक। तो इसके लिए प्रयोग करा रहे हैं। वो क्या प्रयोग करा रहे हैं कि जैसे ये तीन भगवान अपन ने बताए, भाई साहब आप प्रथान सिमंदर भगवान है कि नहीं है कि नहीं, और महावीर स्वामी ये तीनों भगवान है, लेकिन विश्व में कितने द्रव्य हैं डॉक्टर साहब? 6 द्रव्य हैं। कितने अस्थिकाय है बाबू जी? 5 अस्थिकाय हैं। कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व होते हैं। कितने पदार्थ होते हैं? 9 पदार्थ होते हैं। अब ये सब पढ़ाई थोड़ी अलग करो, इनसे सीखो आप कि ये जो 3 भगवान हैं वहां 4 खड़े करो, क्योंकि एक भगवान उन्हें जान रहा था वो भी था। ये भगवान को भगवान बताने वाला नहीं था क्या? तो वो जानने में किसे आए? अब ये भगवान नहीं लगते, समोसन में बैठे भगवान तो लगते हैं, पर ये भगवान लगते ही नहीं। अब ये अपन कैसे भगवान हो जाएंगे कि ये ही भगवान है जिसे बताने के लिए इतने बड़े आयोजन हुआ था पार्ला का। एक भगवान को बताने के लिए इतना बड़ा आयोजन था जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना बड़ा आयोजन कोई कर सकता है। और हो गया बहुत सफलता से, बहुत लोगों के हृदय भींगे, बहुत अच्छे भगवान आके विराजमान हो गए। अच्छा सबका उद्देश्य बताओ क्या? कि जीव को कैसे अपना होश आ जाए, कैसे आएगा होश? ऐसे आएगा कि तुम्हें भेद विज्ञान की आदत डालना पड़ेगी, प्रवीणता होना चाहिए, निर्मल भेद विज्ञान यानी विकल्पात्मक नहीं, पढ़ पढ़ के नहीं, किसी ने कहा इसलिए नहीं, आपका ज्ञान खुद बोले कि हाँ सचमुच में ये ज्ञान हो रहा है, इसमें गई नहीं, इनसे आपसे ज्ञान नहीं हो रहा, मुझे अब लगने लगा कि भीतर से ज्ञान हो रहा। ऐसा निर्मल भेद विज्ञान करोगे तो ज्ञायक ही ज्ञायक दिखने लगे। बाबू जी जैसे अपन को भोजन परोसा और पूछा श्रीमती ने कि बताओ इसमें नमक डला है, और आपका दिमाग था मंदिर की व्यवस्था में, तो आपको भोजन करते समय भी नमक का पता नहीं चल रहा था। और जब श्रीमती ने पूछा कि नमक है कि नहीं, कहाँ विचार कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आपने कहा एक मिनट सॉरी, तो फिर क्या करते हो आप जिससे आपको नमक का पता चल जाता? उपयोग को लगाते ना, ये इतना बता रहे हैं कि प्रवीणता एक कला सीख जाओ आप, कि आप हो तो आपके पास प्रति समय ज्ञान होता है, और वो ज्ञान आपकी सत्ता का परिचय कराता है, और उस ज्ञान से अपन ज्ञेय का परिचय तो कर लेते कि ये पर जिसका ज्ञान है उसको दबा देते, चुप रहो। अपने लड़के को जैसा डांटते कि तुम्हें नहीं मिलेगा भोजन, पहले मेहमानों को मिलेगा, ऐसे ही अपने ज्ञेय को दबाते हैं कि तुम कुछ नहीं समझते, ये बहुत समझते हैं, इनसे सब कुछ दिखता। ये सब पागलपन है, परंतु कभी बड़े बड़े डॉक्टरों का, बड़े बड़े जजों का, बड़े बड़े प्रोफेसरों का दिमाग नहीं जाता इस तक, नहीं जाता इस। ये तो ये सिर्फ जैनियों का जाएगा जो समय सारजी पढ़ेगा, जो गुरुदेव श्री के पास आएगा, कैसे जाएगा? सारे जगत की निगाहें बाहर की तरफ है, तो वो सब घी की रीडिंग करता है और ये साधन दिखता है, कभी ख्याल में ही नहीं आएगा कि भीतर गया एक भगवान विराज। और ये कहते हैं कि कितने ही समझ लो सुन लो, आपको देखना पड़ेगा एक बार कि यहाँ से ज्ञान हो रहा। जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब मुझे महसूस होने लगा कि ज्ञान तो यहाँ से आ रहा, आनंद तो यहाँ से आ रहा, तो समझ लेना तुम पहली स्तुति के लायक बनने जा रहे। आपके संसार अब ज्यादा नहीं, सुनने सुनाने की तारीफ नहीं करेंगे बाबू जी। निर्मल भेद अभ्यास करो आप, आदर करो आप अपना, आपका ज्ञान कहां से आ रहा उसकी कीमत करो। इतना बड़ा ज्ञायक जो सर्वज्ञ स्वभावी है, जिसमें से 24 घंटे ज्ञान आता है, और उतनी इसकी इतनी उपेक्षा की एक बार याद नहीं आता। और जो संयोग जरा देर के लिए मिलते हैं उदयाधीन है, जड़ है, सुख भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, वे माथे में बैठे रहते, ये कुछ बड़ा पाप हो रहा है, पता कहां चलता है? क्या करें जिससे आत्मा आत्मा दिखने लगे? ऐसा करो जिससे तुम्हें आत्मा ज्ञान होता है ना, इससे पता चलता है कि मैं क्या एक हूं। और ये ज्ञान जड़ से नहीं हो सकता क्योंकि जड़ में ज्ञान नहीं। आंख से ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आंख में ज्ञान नहीं। विषयों में सुख क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विषयों से सुख नहीं आ सकता, है नहीं। जहां है वहां से आ सकती पर ऐसे ज्ञान आता है, ये तो सबको मालूम है, प्रति समय ज्ञान होता है। अभी बताना दिलीप भैया, ये जो हम पढ़ रहे हैं इससे ज्ञान आ रहा है कि ज्ञान में से ज्ञान आ रहा है? और सारा जगत एक आप स्वाध्याय कर रहे इसलिए हमें समझ में आ रहा है। वो कह रहे बिल्कुल 100% बात झूठ है, निमित्त 100% है, वाणी शास्त्र माहौल, परंतु 1% भी उससे काम नहीं होता। काम कहां से हो रहा? 100% ज्ञान से ही ज्ञान का काम होता है। जो घी में धर्मी नहीं है वहां से घी से ज्ञान कैसे आए? एक सम्यक ज्ञान दीप का पुस्तक है, छोटी सी, छुल्लक धर्मदास है, तो उसमें ऐसा उदाहरण दिया कि कांच का महल है, उसमें 100 कांच लगे और एक कुत्ता उसमें श्वान चला गया, तो 100 दर्पण में कितने कुत्ते हो गए? 100 हो गए। तो अब वो भोंकते 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 मर गया, तो कितने कुत्ते मरे? और लगते कितने? 100 लगते। और है कितनी बाबू जी? अब बताना जरा, ये पुस्तक है जो दिख रही ना अपन को, पुस्तक है, अभी पुस्तक संबंधी अपन को 31 गाथा संबंधी ज्ञान हो रहा, तो ज्ञान हो रहा तो इस ज्ञान में पुस्तक है कि नहीं? तुझे ये गाथा पढ़ रहे अपन 31, और प्रैक्टिकल के लिए लिखा निर्मल वेदाभ्यास करवा। जो 6 द्रव्य हैं विश्व में, जो विश्व 6 द्रव्य में ही है ना, तो ये 6 द्रव्य किसने जाने? ज्ञान ने। इस ज्ञान में कितने द्रव्य? आप विचारना, विश्व है 6 द्रव्य में, ये किसने जाना? ज्ञान ने जाना। तो ज्ञान में कितने द्रव्य? कुछ है ही, मोपत में मारा जा रहा है। जैसे अपन ने भोजन किया, अपन ने यानी आसमान जाति पर आए, अब ये भोजन किया तो खीर भोजन कहाँ गया? शरीर में। और जीव को क्या मिला? ज्ञान हुआ। तो इस ज्ञान में भोजन है कि नहीं? नहीं है। तो फिर काय को दिमाग खराब करते हो? जब ज्ञान में भोजन नहीं आता, ज्ञान में नोट नहीं आते, ज्ञान में भवन नहीं आता, ज्ञान में पत्नी नहीं आती, तो जीते किस विकल्प में हो आप? ज्ञान स्वभावी हो कि नहीं? जड़ स्वभावी तो नहीं, क्योंकि जड़ तो छूट जाता है। जब ज्ञान स्वभावी हो और जानने का आपका स्वभाव, तो जानने में तो सब आएगा, जो भी दिखेगा वो सब आएगा, क्योंकि ये जानना कुदरती है, इसको ये नहीं बचा सकते आप। परंतु इस जानने में, जानने की प्रक्रिया स्वतंत्र निरपेक्ष होती है, और इसे जानने की क्रिया में गे से अपन बिल्कुल मदद नहीं लेते, कुछ भी सहयोग नहीं लेते, और पूरा जान लेते। इतना बड़ा आकाश दिख जाते, इतने बड़े भगवान दिखते, मंदिर दिखता, 1 सेकंड नहीं लगता दिख जाता। ये ज्ञान में ऐसी रचना करने का धर्म सामर्थ्य। अब वो ज्ञान में ये भवन है कि नहीं बाबू? नहीं, नहीं है ना। अब ये कह रहे कि ये भवन तो दिखता, ज्ञान क्यों नहीं दिखता? कितनी गहरी अरुचि होगी जिसके पीछे गुरुदेव को रात दिन लगाना पड़ा। बीमार थे, बुखार था, तो अभी भूले ऐसा हमने सुना है कि 102 डिग्री तक कितना बुखार रहता था तो भी प्रवचन करते। न जाने कौन जीव आ गया हो, किसके चित्त में ये बात बैठ जाए, आज क्या किसकी होनार अच्छी है, जो वाणी निकलना हो निकल जाएगी। अरे ये इतना भाव कहाँ से आता हो? जानते थे ये बहुत कीमती पर्याय है, एक बार इसके चित्त में ये आदर आना चाहिए कि तुम सर्वज्ञ स्वभावी, ज्ञान स्वभावी, आनंद स्वभावी, प्रभुता लिए हुए कोई अरूपी अमूर्ति भगवान आत्मा हो। इंद्रियों से तुम नहीं जानते, इंद्रियों के 10 प्राणों से तुम्हारा जीवन नहीं है, तुम्हारा विभाग अलग है, इसका विभाग अलग है, इनमें कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये कब बूढ़ा हो जाएगा, कब दांत गिर जाएंगे, कब ये बाल सफेद हो जाएंगे, कब जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, आपसे पूछ के कुछ नहीं होगा। और आप जब अलग अलग जानोगे तो दुख नहीं होगा छोड़ने में, और अलग अलग नहीं जाना तो आंख से आंसू बहेंगे और छूटे बिना रहेगा। तो क्या करना बताओ? निर्मल वेदाभ्यास कैसे करेंगे अपन? 24 घंटे अपने पास ज्ञान अभी क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी अपने रुचि नहीं जगाई अपन ने, अपने सोचे नहीं ऐसा मन में कि काम ये करना। अपन तो ये सोचते थे कि मंदिर में शास्त्र सुनो, पूजन करो, हो गया सवेरे की ड्यूटी पूरी। ये कह रहे कि 24 घंटे का होमवर्क, ये जैन धर्म टाइम बीइंग नहीं है कि थोड़ी देर यहाँ पढ़ लो और फिर तुम्हारा धर्म होता रहे। ये 24 घंटे की ड्यूटी वाला धर्म, जैसे पत्नी को पति के प्रति 24 घंटे पतित्व दिखता कि मेरा पति 24 घंटे, एक सेकंड भी उसे अपने दिमाग से उतारे तो फिर वो सती नहीं रहेगी। ऐसे ये आत्मा और इसकी रुचि 24 घंटे चलेगी कि कभी कभी चलेगी? कि मंदिर में तो लगता है कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभाव, और सीढ़ी से नीचे उतरते हुए फिर विकल्प आ जाता आ जाते ना, फिर इसके बाद परेशान होने लगते कि भाई साहब विकल्प अपनी योग्यता से आते, आत्मा तो वहां भी रहते, तुम के बदल जाते हो वहां भी आत्मा रहते, तो आत्मा रहते तो घबराते क्यों? निशंक रहो कि मैं वो हूं जिसमें से ज्ञान होता है, विकल्प होते वो मैं नहीं हूं, विकल्प तो मेरे ज्ञान के गेय बनते। हम विकल्प से घबराते और आचार्य जो कहते घबराना चाहिए अज्ञान से। विकल्प दुखदायी नहीं, क्योंकि विकल्प तो ज्ञानियों को भी आते, भूमिका अनुसार आते, भोजन के, धंधे के, शादी के, विवाह के, बच्चों को संभालने के, जिस पर्याय में जो जीव होता उस जाति के भाव आते। आपको बाबू जी रोटी बनाने के विकल्प आते नहीं आते, और बहन जी को कभी आपका ऑफिस संभालने के आते नहीं आते। तो जिसने जो ठेका लिया है उसके भाव आते, इसमें क्या तकलीफ? जयती को पढ़ाने के आते, क्यों? क्योंकि वो अपने को पढ़ाने वाली मानते तो उसको याद। तुम जिस तरह से अपने को मानोगे वैसे ही रचना होगी, भाव चलेंगे। तुम आत्मा मानो पर देखो कैसे भाव आते हैं। ज्ञाता रहोगे तो ज्ञाता जैसे भाव आए, और जहां स्वामी बने वो कुछ अपने ऊपर अन्यथा आवरण डाला फिर आपके परिणाम ठहरेंगे नहीं। तो ये निर्मल वेदाभ्यास कितनी देर चलेगा जयती? 24 घंटे। कैसे चलेगा? रुचि से। जैसे डॉक्टर ने कहा कि भैया तुम्हें कैंसर हो गया, अब ये विकल्प कब तक चलेगा? ये अब कुछ याद नहीं रहा तो सोते सोते समय कहीं हम डिस्टर्ब हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब तो 24 घंटे की खुराक होगी उसे, अब तो हम मरे, अब तो हम जाएंगे, कितने दिन के मेहमान, कौन से खा रहा, कौन करा रहा, रुचि करा देती है कि नहीं? ऐसे आचार्य जी कहते हैं रुचि से तुझे 24 घंटे आत्मा दिखने लगे। रुचि चाहिए इसके लिए, आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहती है जनवाणी, कभी जब सुन के ऐसा विचार ना कि ये ज्ञान है कि नहीं, हो रहा है तो कहां से आ रहा, और ये क्यों बंद नहीं होता, ये स्वाभाविक भाव है, यही मैं हूं, इस तरफ मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। निर्मल वेदाभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन से। अब वो कहते देखो ये आंख है, ये कान है, ये नाक है, ऐसा हम जाने तो वेद विज्ञान होगा कि? ये कान पुद्गल का बना है, आंख पुद्गल की रचना है, ये मंदिर सब सफेद रंग का है, भगवान विराजे, ऐसा जानेगी तो वेद विज्ञान होगा कि नहीं बाबू? तो कहते इसका नाम भेद विज्ञान नहीं। क्यों नहीं इसका नाम भेद विज्ञान? कि ये तो तुमने अनंत बार ऐसी तो पढ़ा है, 6 द्रव होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं होता, पुण्य पाप में धर्म नहीं होता, ये सब तुम पढ़ लेते और आत्मा दिखते ही नहीं तुम। ये तो 6 ज्ञान कहलाता है। देखो इंद्रियों भेद विज्ञान कैसे करा, अंतरंग में दिखेगी अति सूक्ष्म चैतन्य आत्मा और उसमें नहीं दिखेगी इंद्रियां, उसको कहते वेद विज्ञान हुआ। नहीं समझ में आया? इंद्रियां भिन्न है ऐसा जानने कहने पढ़ने से वेद विज्ञान नहीं होगा। वो कहती जिसमें इंद्रियां नहीं है उस आत्मा को जानने से, अरे रे मैं तो ज्ञान स्वभाव, इसमें इंद्रियों की जरूरत कहाँ है, अभी हो गया वेद विज्ञान। इनको अलग करने से वेद विज्ञान नहीं, अलग जानने से वेद विज्ञान नहीं, जिसमें इंद्रियां नहीं है उसे जानने से इंद्रियां भिन्न हो गई। कैसा मंगल, यानी इसमें कुछ भी कष्ट ना हो, इतना सरल धर्म कैसे समझ में आया जीव है? किसी से कह के देखो आप अतिंद्रिय हो भगवान, सुनना नहीं चाहते। और सचमुच में जीव भगवान है, अति सूक्ष्म है। क्यों कहा? क्योंकि ये विकल्प जो होते हैं, एक तो सो होते हैं मंदिर आए पूजन की अच्छी बात है, नहीं आओगे तो और संकलेश रूप होंगे, यहाँ आना चाहिए, समय पे आने चाहिए। उल्लसित भाव से पूजन पाठ स्वाध्याय में हृदय भींगता, इसके बाद जनवाणी सुनना चाहिए, उससे थोड़ी और कसाएं मंद होती। अब वो कहते हैं इसके बाद सुनना चाहिए जनवाणी, सुन करके थोड़ी आंख बंद करके देखना चाहिए, तो अभी चिंतन में चलेगा। अब वो कहते ये सब स्थूल है, ये आत्मा अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म यानी इन सब क्रियाओं को होने वाले परिणामों को जानता रहता है, तो वो जाननहार है, वो सूक्ष्म। और ये जो जानने में आती है उसमें उपयोग लगता है, वो स्थूल। तो अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव, इसका अवलंब, अवलंबन क्या कहलाता? अवलंबन यानी श्रद्धान, अवलंबन यानी ज्ञान, श्रद्धा ज्ञान आचरण, इसको कहते हैं आश्रय अवलंबन। अपने पास कोई हाथ पैर नहीं है जो अवलंबन लेना पड़े, अपने पास है ज्ञान श्रद्धान और आचरण। तो इस श्रद्धा का विषय ये बने, अरे जो जाननहार है ये मैं श्रद्धे गी। तो इस तरह से अवलंबन लेने से सर्वथा अपने से अलग किया। ये इंद्रियां अगले भव में मिलेंगी कि नहीं, अपन समाधि से देह छोड़ेंगे तो अगली भव में दिव्य पर्याय मिलेगी कि नहीं भाई साहब, मिलेगी कि नहीं? तो फिर आप इंद्रियां नहीं जीत सकते। ये कह रहे सर्वथा अलग करो, अब हमें इंद्रियां चाहिए ही नहीं, है ही नहीं, इंद्रियों के बिना ही मैं त्रैकालिक आत्मा हूं। तब ये इंद्रियां तो मिलेंगी पर इंद्रियों में रुचि नहीं रहेगी। जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक कोई ना कोई शरीर तो होगा, परंतु इंद्रियों के कारण से मेरा अस्तित्व मानता था, अब वो सर्वथा बात निकल गई। अब सर्वथा उससे रह देखा तो सर्वथा रहत होने की दशा आने लगी, सिद्धत्व आने लगा। समय जा रहा, एक छोटा सा भजन बोलते हैं। ये सभी लोगों को ये अभ्यास करना बहुत, मतलब करुणा सागर समझना इन अमृत चंद देव को, गुरुदेव को, जिन्होंने ये प्रैक्टिकल सौंपा। एक जवेरी था डॉक्टर साहब, और उसकी बेटी को उठा के ले गया डाकू, और डाकू ने 5 लाख रुपए भी ले लिए और बच्चा भी वापस नहीं, और बच्चे को अच्छा लगा तो बोले हम इसे भी डकैत बनाएंगे। तो उसको पढ़ाया डाकू, ऐसे बनो, ऐसे करो, ऐसे चोरी की जाती, इस तरह से उसे डाकू होने की कला में पारंगत कर दी। अब वो बहुत देशों में घूमते घामते वो अपने नगर में आया और अपने घर पे ही डाका डालने आया। तो उसे तो पता नहीं है कि ये मेरा ही घर है और मैं अपने घर में डाका डाल, और उसमें से जवेरी की दुकान थी तो रत्न सोना चांदी ले जा रहा था, और सवेरे का वक्त उसके पापा और उसके चाचा घूमते हुए चले आ रहे थे और ये चोरी करके जा रहा था, दोनों बीच में टकरा गए। तो एक थर्ड पर्सन बोला कि भाई साहब बेटा एक मिनट रुकना, कौन हो तुम? डाकू, क्या करोगे, क्या क्या जरूरत है? अरे बेटा डाकू आपको नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे तुम कौन हो, तुम्हें पता है? तुम्हारा चेहरा देखो, इनसे मिलता है कि? बेटा था ना उनका, तो उन्हीं जैसा चेहरा करीब करीब बहुत कुछ मिल जाता। देखो बेटा कितनी उम्र है तुम्हारी? 20 साल की। और इनका बेटा घूमे 2 साल का था, 18 साल हो गए, आज 20 साल का हो गया। और चेहरा देखो आप, और बताएं आपके भीतर ये तिल है, ये मसाज देखो जरा खोल के, ऐसी चिन्ह भी होता है, उम्र भी बताई, चेहरा भी बताया। अब देखना वो व्यक्ति जो घर की चोरी करके आया था और जिसे चोरी की कला जबरदस्ती सिखाई गई थी मार मार के, और उसे चोर बनाया गया था, सचमुच में वो जवेरी था कि चोर था? जवेरी था, पर अपने आप को क्या मानने लगा था? चोर मानने। तो चोर माना तो अब उसके भाव कैसे होने लगे? चोरी चोरी क्यों होते थे? अब श्री गुरु मिले, यानी चाचा ने कहा, पड़ोसी ने कहा कि बेटा ऐसा नहीं सोचो कि हम चोर हैं, पहले देखो तुम चेहरा, देखो उम्र, देखो चिन्ह, देखो। अब देखना वो अभी जाएगा तो सरदार के पास, पैसा सामान तो उसे देगा, पर उसका चिंतन चालू हो गया, कह रही यार मुझे क्या कह रहे, तुम जवेरी हो, तुम चोर नहीं हो, तुम इनके घर के लड़के हो, देखो पिताजी में। ये जिनवाणी इतना चाहती बाबूजी कि आपने इतना अच्छा सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे जीव हो आप, आपकी होनार अच्छी है, आपका संसार ज्यादा नहीं, क्योंकि आत्मा की बातें सुनने मिलना बहुत दुर्लभ। परंतु ये कहते हैं कि जैसे वो जवेरी पुत्र का चिंतन चालू हो गया कि मैं डाकू नहीं हूं, मैं जवेरी, ऐसे ही मैं राजेंद्र नहीं हूं, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वभावी। ऐसा चलेगा तो ज्ञान ज्ञान उर्ध हो जाएगा और एक जड़ के प्रतिपक्ष छूट जाए। समय सार जी जिने भागया, वे सब किस्मत वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं। समय सार जी जिने भागया, वे सब किस्मत वाले हैं, दोहरा सकते एक लाइन, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं। पहले तो जिन मंदिर जी में दर्शन करने जाता था, पूजा करूं प्रभु कृपा हो, धर्म यही दिखलाता था। गुरु कान से मिली देशना, प्रभु सम प्रभुता पहचानो, मात्र पुजारी नहीं बनो तुम, शाश्वत भगवान हो जानो। जो अरहंत देव सम निज को, जो अरहंत देव सम निज को, जाने पुरुष वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ कि अच्छे दिन आने वाले,
यानी सिद्ध होने वाले हो आप।
सी मंदर प्रभु जिने मिल गए, बड़े वो किस्मत वाले हैं। महावीर का मार्ग भाग गया, वो बड़े किस्मत वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ कि अच्छे दिन आने वाले हैं। पहले जिन वाणी माँ को मंदिर में सजा सजाता था, शास्त्र सभा आयोजन रचने, नृत्य संगीत सुनाता था। गुरु कान से सुनी भागवत कथा, हृदय के तारे बजे, दौड़ पड़ी रे दुनिया सारी, घट घट बंधन बार सजे। समय सार अमृत रस पीने लगे रे भाग निराले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं।
ये पहले क्या क्या करते और फिर ज्ञानी जन मिलने से क्या हुआ?
पाप छोड़कर पुण्य कमाओ, सीख सिखाते जग प्राणी, पुण्य वाओ भी धर्म नहीं है, गर्जी गुरुवर की वाणी। पुण्य सुन सभी जैन साहब चकराए घबराए, अरे स्वानुभव धर्म बताने बाले नया धर्म लाए। हम लोगों के यहाँ तो बहुत तकलीफ है ये सब बातें। 1.5 लाख जैन है जबलपुर में और मुश्किल से 400-500 मुमुक्षु जो अपने इस आयोजन में आते। सुविधा भोगी पुण्य चाहते क्या समझे मत वाले हैं,
इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले
हैं। मुझे ऐसा लगता था ये पुस्तक उठाएंगे रखेंगे तभी तो काम होगा, बिना करे कैसे होगा काम, बिना करे कैसे कुछ होगा, सारा ही संसार कहे होने योग्य वही होता है जिन शासन शंख नाद करे, अहो अकर्ता वादी सृजन शासन ही करता निर्वाण, सभी द्रव्य परिणमनशील क्रमबद्ध परिणवे अहम निवार, चाकू सब्जी नहीं छीलती। क्या कहा भाभी, चाकू सब्जी नहीं बनाती समझे बुद्धि वाली है,
इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं, इसीलिए तो कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं।
जब तक गुरुदेव नहीं मिली थी सब विद्वान एक साथ नहीं बैठ सकते, सब अपनी अपनी ख्याति चाहती थी, ऐसा लगता हमें भी पहचान गई हम भी कुछ पढ़े। सारे जग के जीव हमें जाने हम जग को पहचाने, सारे जग में नाम हमारा होए प्रतिष्ठा तब माने, हे गुरुदेव आपने आकर आत्म ख्याति हो समझाया, मोही गर भगवान भी करे लाभ बताओ क्या आया, भगवान हमको भविजन कहते हम ही तिरने वाले हैं,
इसीलिए तो कहूँ अच्छे दिन आने वाले हैं, इसीलिए तो कहूँ अच्छे दिन आने वाले हैं।
2 मिनट का और है, लोग तुम सोनगढ़ी हो गए, कांजीपंथी हो गए, नया धर्म चलाने लगे, वो बोले क्यों भाई तुम भी अरे हो गए सोनगढ़ी, तुम भी कान्हजी पंथी नए धर्म के हो गए अनुयायी, हमने बोला सुनो सुनो जी वो ही हुए हमारे हैं, हम सोनगढ़ी नहीं हुए यानी श्वेतांबर नहीं हुए, स्वामी जी हमारे दिगंबर हो गए। हमने बोला सुनो सुनो जी वो ही हुए हमारे हैं, वो ही बने दिगंबर जैनी श्वेतांबर मत तज आए, अपने कुंद कुंद मुनि माने, अपने कुंद कुंद मुनि माने रहस्य बताने वाले हैं,
इसीलिए कहता हूँ तो छे दिन आने वाले हैं, इसीलिए कहता हूँ अब अच्छे दिन आने वाले।
एक भी व्यक्ति को हम जैन धर्म नहीं सिखा सके, उनने लाखों मन मंदिर में महावीर जी बसा दिए, शिविर दिगंबर धर्म दिगंबर जगह जगह ही लगवाए सर्वोदय तीर्थ उद्घाटन करते श्री गुरुदेव दुखे सच्चे जैनी जैन धर्म के
सच्चे जैनी जैन धर्म के
अब यही रखवाले
हैं सुनो लिए तो कहूँ अब अच्छे दिन आने वाले हैं इसीलिए कहता हूँ अब अच्छे दिन आने वाले
पूरा जीवन हमें सौंप दिया धर्म रहस्य बताने को जिन वाणी समझाई जिनने पक्ष व्यामोह गलाने को जिनने आचार्यों की वाणी खोल दिया ता मरम सारा अध्यात्म था बंद तालों में तुमने घर घर पहुंचाया जो उनके नहीं हुए समझ लो सुनना भाई साहब
जो उनके नहीं हुए समझ लो
बहुत भटकने
वाले हैं सुन लिए तो कहूँ अब अच्छे दिन आने वाले हैं इसीलिए कहता हूँ अब अच्छे दिन आने वाले
समय सार जी जिसे भाग गया
समय सार जी जिसे भाग गया
भी बड़ी किस्मत
वाले हैं सुन लिए तीता हूँ अब अच्छे दिन आने वाले हैं इसीलिए कहता हूँ अब अच्छे दिन आने वाले हैं
पंकज भाई कामदार टेबलेट विषय थोड़ी मिलती आप आज आए वैसे बोलना नहीं तो पैसे रही बार
माइक ले लो
આ ટેબલેટ આમ માર્કેટ પ્રાઇસ 15,000 છે પણ આપણા ઘણા મુમુક્ષુ ને ભાવના હતી કે જરા મોટી સાઈઝનું હોય તો આપણે અહીંયા કંપનીનો માણસ પણ બોલાવેલો છે તો આ સ્તુતિ બાદ જેને પણ રસ હોય તો આની કિંમત લગભગ 11,500 રૂપિયા છે તે મોટી સાઈઝનું છે જે અને ટેબલેટ સંબંધી કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો અહીંયા એનો માણસ આવેલો છે તો આપણને સમજાશે તો સ્તુતિ બાદ જેને રસ હોય તે અહીંયા ઉભા રહે
શરીર સિદ્ધ સમય પ્રાપ્ત ઉષ્પાદી મહેજ પર 24 ઇન્દ્ર ભગવાન નો જય હો વિદ્ય ક્ષેત્રમાં વિદ્યમાન શ્રી મંદ્રાદી અજીત વિરે પરંતુ વિશ્વમાન જીનેન્દ્ર ભગવાન નો જય હો અદ્ય જીન મંદિરમાં વિરાજમાન અખંડ સાધના પ્રતિક શ્રી બાહુબલી મુનિન્દ્ર ભગવાન નો જય હો દિવ્યધની ના સારભૂત નિત્યબોધક પરમાત્મ સમય સાધ્ય સમસ્ત જીનવાણી માત નો જય હો ભારત ક્ષેત્રમાં સદ્ધન વૃદ્ધિ કરનાર ભગવાન શ્રી કુંદકુંદ આચાર્ય દેવ નો જય હો લાખો કરોડો ભક્તવાતાર અનંત અનંત ઉપકારી શ્રી કહાન ગુરુ દેવ નો જય હો પ્રસન્નમૂર્તિ ધન્યવતાર પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય હો અનંત કરુણા કૃપા નિદાન પરમ કૃપાઉ દેવનો જય હો શાશ્વત પર્વાસ્તાનિકા પર્વનો જય હો શ્રી પરમ પવિત્ર સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો નિજ નિધિ નિજ મે બતાઈ યહ અનંત ઉપકાર હૈ ઇસકે લિયે જિન વાણી મા કો વંદના સતવાર હૈ પુર દ્વાદશાંગ મે જિન વાણી માતનો જય હો